Mercy, Savior. Om Namah Sita Vyah. Om Namah Sita Vyah. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vachayanam. Namo Loe Savasahunam. Sayalinda Vindavandiya Mahinandiya Bhava Paumavana Sandam. Ahinandana Jinanaham. Namivuna Uvakkamam Ocham. यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतवली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 15वीं पुस्तक में जो शेष अभी 18 अनुयोग द्वार 15वीं 16वीं चलेगी, तो 15वीं पुस्तक में हमने निबंधन अनुयोग द्वार देखा था, प्रक्रम अनुयोग द्वार देखा था, अभी उपक्रम अनुयोग द्वार देखते हुए हम पृष्ठ संख्या 52 पर आ गए। 52 उपक्रम का अर्थ होता है बंध के बाद दूसरे समय से लेकर जो कर्म की अवस्था होती है उसको उपक्रम कहा था। कर्म उपक्रम की बात है ना, तो उसमें बंधन उपक्रम, उदीर्णा उपक्रम, उपशामना उपक्रम और विपरिणाम उपक्रम, ऐसे चार भेद हैं। तो कर्मों की जो उदीर्णा होती है, कौन से कर्म की कौन से गुणस्थान तक होती है, इसे हमने बात पहले देखी थी। आयु की पहले से छठे गुणस्थान तक होती है, वेदनीय की भी पहले से छठे तक ही होती है, फिर मोहनीय की कहाँ से कहाँ तक, हाँ एक से, नहीं तो आगे नहीं जाना, हाँ एक से दसवें गुणस्थान तक है। ज्ञानावरण की, दर्शनावरण की और अंतराय की 12वीं की, जहाँ जिसका क्षय है उसके अवली पहले ही उसका रुक जाता है। आयु का भी मरण के पहले अवली काल इतने उसकी उदीर्णा रुक जाती है। नाम और गोत्र की उदीर्णा 13वें के अंतिम समय तक, वहाँ अवली वाला नियम नहीं है। अब उसमें हमने तीन प्रकार के देखे थे, एक तो भुजाकार, एक अवस्थित और फिर अल्पतर। भुजाकार ने पहले कम प्रकृति बनती थी, बाद में ज़्यादा बंधनी उदीर्णा की बात है, बार बार बंधन बनती है ऐसा ही कहती हूँ मैं। उदीर्णा वाली पहले कम उदीर्णा होती थी, अधिक उदीर्णा होने लगी। जैसे मरण के पहले 7 की उदीर्णा होती थी, क्योंकि आयु की उदीर्णा रुक गई थी, अन्य भाव में चला गया, वहाँ 8 की उदीर्णा होने लगी, तो हम कहेंगे वो भुजाकार बनी उदीर्णा है। अल्पतर पहले अधिक प्रकृति की उदीर्णा होती थी और बाद में कम होती है, जैसे छठे में से 7वें में गया, छठे तक तो 8 की होती थी और 7वें में जाने पर 6 की होने लगी, तो उसको अल्पतर कहेंगे। उसके अलग अलग हमने भंग भी देखे थे, अब यहाँ हम 52 पृष्ठ पर नीचे देखते हैं। नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय, ये नीचे से चौथी लाइन। वेदक प्रकृत है भुजाकार, अल्पतर और अवस्थित उदीरक नियम से है, अवक्तव्य उदीरक नहीं है। अवक्तव्य उदीरक किसको कहा था, पहले उदीर्णा नहीं होती थी और बाद में होने लगी, ऐसा कभी नहीं होता, इसलिए उसको अवक्तव्य होता ही नहीं ऐसे कहा, अवक्तव्य उदीरणा होती ही नहीं। इस प्रकार ओघ समाप्त हुआ, यानी वो सामान्य कथन की अपेक्षा से बात बता दी। शेष गति आदि कोम के विषय में जानकर कथन करना चाहिए, यानी जिस गति में जितने संभव है, क्योंकि मनुष्यों में 14 गुणस्थान है, तो वो गुणस्थान की अपेक्षा जो बात संभव होती है वो तो मनुष्यों में लागू होती है, बाकी देव नारकी उसमें जितने ही संभव है वहां पर उतने की बात वहां बताएंगे, इसलिए जानकर कथन करना चाहिए ऐसा कहा। देखो भागा भाग देखो, एक होता है अल्प बहुत्व, एक होता है भागा भाग। भागा भाग यानी बड़ी संख्या से शुरू करते हैं फिर छोटी तक जाते हैं, उसको भागा भाग कहते हैं। परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर और भाव को जानकर ले जाना चाहिए। अल्प बहुत्व में भुजाकार उदीरक स्तोक है। भुजाकार उदीरक का अर्थ क्या है? पहले कम और बाद में ज्यादा, ऐसे जो उदीरक है वे कम है। अल्पतर उदीरक विशेष अधिक है, पहले अधिक करते थे बाद में कम। जब मरण काल नजदीक आता है तो 8 में से 7 वाले होने वाले जीवों की संख्या ज्यादा है। विशेष कितना है? वह संख्यात मनुष्य जीवों के बराबर है। यह कुछ अलग बताना चाहते हैं, संख्यात मनुष्य जीवों के बराबर है। अच्छा, भुजाकार उदीकर अल्पतर। अच्छा, अल्पतर है जैसे छठे से ऊपर चढ़ गए, ऊपर के गुण स्थानों में जो होते हैं, क्योंकि वो चौथे तक तो सारे अन्य गति के देवनारकी के चौथे तक है, तीर्यंच के 5वें तक है, और मनुष्यों की अपेक्षा वो अल्पतर होते चले जाते हैं। छठे गुण स्थान में 8 के है, फिर आगे 6 के हो जाएगी इस तरह से। इसलिए वो संख्यात मनुष्य का है। श्रेणी चढ़ने वाले या संयत मुनिराज है उसकी बात की। अल्पतर उदीरकों से अवस्थित उदीरक असंख्यात गुणे हैं। गुणकार क्या है? गुणकार असंख्यात समय है। इसी प्रकार मनुष्य गति में भी अल्प बहुत्व कहना चाहिए। शेष गतियों में नहीं, अवस्थित यानी समान, उतना का उतना। जैसे जन्म से लेकर 8 का करता है तो कितने काल तक करेगा? जब तक मरण काल नहीं आए, आवली काल पहले तक। तो अवस्थित यानी उतना का उतना। तो कितनी ही बड़ी आयु क्यों ना हो, सागरों की भी, 33 सागर की, वो कितनी है? असंख्यात समय है, अनंत नहीं है। सागर जो है वो असंख्यात समयों का है। पल्ल्य कहो, सागर कहो, यह असंख्यात का माप है, इसलिए वह असंख्यात समय कहा। उदीरक में पहले संख्यात थे ना, उससे असंख्यात गुणा किया। इस प्रकार अल्प बहुत्व समाप्त हुआ। अब पदनिक्षेप, ये पहले भी, पहले कौन सा, हमने 3 बातें देखी थी उसमें। देखो यहाँ पर 48 पेज पर लिखा था, भुजाकार पदनिक्षेप और वृद्धि उदीर्णा। वहां उसकी बात आई थी, वो होती नहीं एक एक प्रकृति में, परंतु जहाँ प्रकृति स्थान यानी अनेक प्रकृतियों की बात होती, उनकी संख्या की, तो वहां ये बातें घटित होती है। तो उसमें भुजाकार तो बता दिया, अब पदनिक्षेप कहेंगे। उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? उत्कृष्ट वृद्धि यानी पहले कम उदीरक था, कम प्रकृतियों का, और फिर एकदम ज्यादा बढ़ गया। 2 में से तो बढ़ नहीं सकता, 5 वाले का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 5 वाला 11वें वाले को 5 है, हाँ, तो 11वें में मरेंगे, देव में चले जाएंगे, 8 का चालू हो जाएगा। देखो, उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? 5 का उदीरक जो उपशांत कषाय जीव मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसके देव होने के प्रथम समय में 8 की उदीर्णा करने पर उत्कृष्ट वृद्धि होती है। देखो, आप कल नहीं थे, परंतु ये जो उदीर्णा चलती है 8 कर्मों में होती है, और वो जब तक उसकी उदीर्णा की विच्छित्ति नहीं कही, तब तक वो तो हर समय होती रहती है। जन्म से आठवीं कर्मों की उदीर्णा होती है। आयु की उदीर्णा मरण के आवली काल समय पूर्व रुक जाती है, क्योंकि उदीर्णा उसे कहते हैं कि आवली के बाहर के जो परमाणु है वो आवली काल में आ मिले, उसी को उदीर्णा कहते हैं। जब आवली ही शेष रही तो उसमें उदीर्णा का सवाल ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कोई निषेक ही नहीं। देखो, पांच का उदीरक जो उपशांत कषाय जीव मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसके देव होने के प्रथम समय में आठ की उदीर्णा करने पर उत्कृष्ट वृद्धि होती है। यानी एकदम पांच से आठ हो गए ना, इसलिए उत्कृष्ट वृद्धि कहा। इसी के अनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है, आठ का आठ रहा वो उत्कृष्ट अवस्थान। उत्कृष्ट हानि किसके होती है? तो जो आठ का उदीरक प्रमत्त जीव अप्रमत्त हुआ है उसके उत्कृष्ट हानि होती। कितनी की हानि हुई? दो की है। बारहवें में ये पांच से दो हुआ है, वैसी हाँ वो शंकाकार आपकी शंका पूछेगा। आचार्य उनको पता था शंका। पांच के उदीरक जीव के द्वारा दो की उदीरणा करने पर उसके उत्कृष्ट हानि की प्ररूपणा क्यों नहीं की गई? उसका समाधान नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत प्रकृतियों से बहुत हानि को ग्रहण किया गया है। कितने प्रकृतियों की हानि होती है वहां, तो मूल प्रकृति खाली है पांच से दो, या तो बाकी भी अगर प्रकृति ले लेंगे, अथवा यह विकल्प भी चूंकि संभव है, इसको भी हम कह सकते हैं कि पांच से दोन हुआ इसलिए वो उत्कृष्ट हानि, अतः उसका भी यहाँ संग्रह करना चाहिए, यानी उसको भी बता देना चाहिए। हानि स्तोक है तथा वृद्धि व अवस्थान दोनों ही समान होकर उससे विशेष अधिक है। इस प्रकार ओग समाप्त हुआ। मनुष्य गति के सिवा शेष गतियों में वृद्धि हानि व अवस्थान तीनों ही समान है। ऐसा क्यों कहा? तो उसमें या तो सात का या आठ का, दो ही पॉसिबल है। तो वृद्धि भी समान है हानि, यानी आठ से सात होना, सात से आठ होना, जो कुछ है वृद्धि या हानि। आठ से सात हुआ तो हानि हुई, एक की हुई, वृद्धि भी होगी तो एक की होगी, अवस्थान भी होगा तो एक का ही होगा, या आवली काल में सात सात का चलेगा वो भी अवस्थान कहलाएगा, इसलिए वो समान कहा। आगे वृद्धि उदीर्णा का कथन करते हैं। ये बात जो हमने देखी थी भुजाकार पदनिक्षेप और वृद्धि उदीर्णा, वृद्धि उदीरणा, ये जो वृद्धि हुई है वो कितना कहलाएगी उसको? तो कहते उदीरणा की वृद्धि हुई वो कितनी है उसको बताएंगे। संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि और अवस्थित उदीरणा, ये चार ही पद यहाँ होते हैं। जहाँ वृद्धि या हानि नहीं होती उसको अवस्थित कहा। यदि वृद्धि होती है तो कितनी और हानि होती है तो कितनी? तो कहते हैं संख्यात भाग वृद्धि और हानि दोनों लगाए, और संख्यात गुणा वृद्धि और हानि, वृद्धि हानि 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 विशेषार्थ। पहले पदनिक्षेप का कथन कर आए हैं, वहाँ उत्कृष्ट हानि का निर्देश करते समय पांच की उदीर्णा करने वाले के दो की उदीर्णा करने पर उत्कृष्ट हानि संभव है। उत्कृष्ट हानि के इस विकल्प का भी निर्देश किया है। अब यदि इस विकल्प की विवक्षा की जाती है तो संख्यात गुण हानि के चार पद संभव है। पांच से दो हुआ, कितनेवा भाग हुआ? संख्यातवा भाग, यानी संख्यात गुण हानि हुई वहां पर, आधे से भी कम हुआ ना, तो दो गुण हानि कहेंगे तो पांच से ढाई हो जाएगी। अब ये तो दो हो गए, इसलिए उसको संख्यात गुणहानि के चार पद संभव है। और यदि इसकी विवक्षा नहीं की जाती है उसको संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि और अवस्थित, ये तीन पद संभव है। यानी पांच से दो होते हैं तो संख्यात गुणा हानि वाला पद भी उसमें आएगा, और अन्य तो तीन है ही है। अब उसकी अपेक्षा नहीं लेंगे तो संख्यात गुणा वाला वह नहीं घटित होगा, संख्यात भाग होगा। संख्यात वा भाग बढ़ना या हानि होना, जैसे आठ से सात हुआ तो कितना, कितने वा भाग कम हुआ? हाँ, आठवां भाग कम हुआ, एक कम हुआ ना। ये सात से आठ हुआ तो एक भाग बढ़ा, सातवां भाग बढ़ा, तो उसको संख्यात भाग वृद्धि या संख्यात भाग हानि कहेंगे। और जहाँ कुछ हानि वृद्धि नहीं होती वहां तो अवस्थित होता है। इस प्रकार मूल प्रकृति उदीरणा समाप्त हुई। ये तो मूल प्रकृति की बात यहाँ समाप्त हुई, अभी उत्तर प्रकृति की बात होगी। उत्तर प्रकृति उदीरणा दो प्रकार की है। एक एक प्रकृति वो क्रू रह गया, एक एक के आगे प्रति हुआ है, प्रकृति करना। एक एक प्रकृति उदीरणा और प्रकृति स्थान उदीरणा, जैसे हमने मूल प्रकृति में देखे थे ना, उसमें भी एक प्रकृति उदीरणा देखी थी। एक एक प्रकृति उदीरणा यानी एक एक की बात अलग की, आयु की अलग की, वेदिनी की अलग की। आयु की कहाँ से कहाँ तक होती बताए, वेदिनी की बताए, हर एक की अलग अलग होता है। प्रकृति स्थान में उसमें आठ का स्थान, सात का स्थान, छः का स्थान, पाँच का स्थान और दो का स्थान, ऐसे स्थान बताए। वो तो मूल प्रकृतियों ने आठ में ही हमको करना था, अब यह उत्तर प्रकृतियों में बताएंगे। इनमें से एक एक प्रकृति उदीरणा के स्वामित्व का कथन करते हैं, यानी कौन सी मूल उत्तर प्रकृतियाँ कहाँ कहाँ उसकी विच्छित्ति होती, कहाँ से कहाँ तक उसकी उदीरणा होती है, उसकी बात यहाँ बताएंगे। पांच ज्ञानावरणीय प्रकृतियों का उदीरक कौन होता है, एक से बारहवें हमने देखे थे ना, हमने ज्ञानावरण देखा था, यहाँ तो सभी की सभी होगी। उनका उदीरक अन्यतर छद्मस्थ होता है, यानी छद्मस्थ होता है क्योंकि हम एक से बारह देखा था। विशेष इतना है कि छद्मस्थ काल के अंत में जिसके आवली मात्र काल शेष रहा है, ऐसा छद्मस्थ जीव उनका उदीरक नहीं होता। क्योंकि देखो अभी एक क्षय होता है ना, बारहवें के अंत समय में सभी के सभी खिर जाते हैं। ये जो खिर जाने का जो कार्य हुआ था तो पहले ही उसकी गुणश्रेणी रूप से उसकी रचना यानी अपकर्षण वगैरह होता रहा, गुणश्रेणी में भी और उदयावली में भी देते रहे मान। ऐसे करते करते अभी आवली काल शेष रहा तो अभी आवली के ऊपर कोई निषेक नहीं बचे, तो जितने आवली के निषेक है अभी उसके अपकर्षण रुक गया, उसमें क्या होगा, एक एक निषेक खिर जाएगा, इसलिए उदीरणा रुक गई, ऐसे कहा। इसी प्रकार छद्मस्थ की अंतिम आवली के प्रारंभ से लेकर अंतिम समय तक के आगे के सब छद्मस्थ जीव अनुदीरक है, किसके, ज्ञानावरण के। हाँ, अन्य की बात नहीं है, ज्ञानावरण के उदीरक कौन है, पहले गुणस्थान से बारहवें के अंतिम आवली छोड़कर वहां तक के, और वहां से आगे वाले ज्ञानावरण के अनुदीरक कहलाएंगे। इसी प्रकार चार दर्शनावरणीय, ये चार दर्शनावरणीय कौन से लेने, हाँ हाँ स्थान वृद्धि, चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण, ये क्यों चार लेने हुए, बारहवें में तो वही बचे हैं, हाँ बाकी के तो अभी पहले ही उसकी विच्छित्ति हो गई है, इसलिए यहाँ कहते हैं। चार दर्शनावरणीय, पांच अंतराय, निद्रा प्रचला, ये निद्रा प्रचला को अलग क्यों निकाला, तो छह दर्शनावरण कहते ना, नहीं देखो दर्शनावरण के अभी हमको खाली उदय की विच्छित्ति भी नहीं लेना, इस ध्यान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला को कहां पर छोड़ा? हाँ, उदय की विच्छित। हाँ, बहुत अच्छा। छठे में उदय की विच्छित होती है। तो उसके बाद तो उदय नहीं है तो उदीर्णा का सवाल नहीं है। और निद्रा प्रचला का उदय की विच्छित 12वें के उपांत समय में होती है। 8वें में आपको याद है वो बंद की विच्छित। हाँ, तो इसलिए उसकी विच्छित एक समय पहले हो जाएगी, क्योंकि उनमें इनमें कोई विशेषता नहीं है। निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला और स्थान वृद्धि, इनका उदीरक कौन होता है? तो देखो, इंद्रिय पर्याप्ति से पर्याप्त होने के द्वितीय समय में रहने वाला, यानी इंद्रिय पर्याप्ति पूरी नहीं होती है तब तक तो वो उसका उदय ही नहीं है स्थान वृद्धि आदि का। और कहाँ कहाँ नहीं उदय होता स्थान वृद्धि त्रिक का? हाँ, देवगति में भी नहीं है। तो अभी हम पढ़ेंगे, देखो। हाँ, नहीं होता। देखो क्या कहते हैं, इंद्रिय पर्याप्ति से पर्याप्त होने के द्वितीय समय में रहने वाला अन्यतर जीव उनका उदीरक होता है। इसको आदि लेकर, यानी यहां से लेकर प्रमत्त संयत गुणस्थान तक कोई भी जीव इन प्रकृतियों की उदीरणा के योग्य होता है। योग्य कहा? अभी इसका उदय उदीर्ण हर समय चलेगी कि नहीं चलेगी? हाँ, जब उसका उदय है उस समय उसकी उदीर्ण होगी। उदीर्ण उसी कहते जो उदयावली में दिया जाता है। तो अभी अगर उदीर्ण होने लगी तो जागृत अवस्था ही नहीं रहेगी। हाँ, तो जब उसका उदय चल रहा है इसलिए योग्य कहा उसने। परंतु जब हम मूल प्रकृतियों की बात कहते थे तो मूल प्रकृतियों की तो उदीर्णा हर समय बताई थी, क्योंकि वहां तो इन जनरल सभी की बात है, वो चक्षु अचक्षु जो कुछ है। वो विशेषता इतनी है कि उत्तर शरीर की विक्रिया के अभिमुख हुए, अभी किस किस को ये नहीं होती उसकी बात बता रहे हैं। हमने तो देखा ना, छठे तक तो इसका इसकी उदीर्णा हो सकती है। अब छठे में भी किसको नहीं होगी? उत्तर शरीर की विक्रिया, छठे गुणस्थान में वो विक्रिया भी करते हैं और वो आहारक शरीर भी बनाते हैं, तो उसको उत्तर शरीर कहा। उत्तर शरीर की विक्रिया के अभिमुख हुए प्रमत्त संयत की अंतिम आवली से लेकर आगे जब तक आहारक शरीर उत्थित हो करके मूल शरीर में प्रविष्ट नहीं होता तब तक वह इनका अनुदीरक है। यानी अभी आहारक शरीर के एक अवली पहले से ही वो अनुदीरक है, यानी वहां उस त्यान वृद्धि आदि का उदय भी नहीं होगा। किसका अर्थ? उत्थित हो, आहारक शरीर उत्थित हो, उत्पन्न हो, उत्थित होकर नहीं, उत्पन्न नहीं, उत्थित होकर के मूल शरीर में प्रविष्ट नहीं होता, यानी छोड़ना। हाँ, वो छोड़कर, हाँ, उसी को यहाँ विक्रिया कहा। यानी उसके आवली पहले से उसकी उदीरणा नहीं होती थी, अब पूरा आहारक शरीर बनाया, वापस मूल शरीर में लौटा, उसके बाद उसकी उदीरणा हो सकती है। अप्रमत्त संयत, यानी छठे तक उसकी उसका उदय है ना, तो अप्रमत्त वाले को उदय तो नहीं, उदीर्णा भी नहीं होगी। अप्रमत्त संयत देव नारकी आहारक शरीरी और उत्तर शरीर को, शरीर की विक्रिया को प्राप्त तिर्यंचो मनुष्य तथा असंख्यात वर्षायुष्क यानी भोगभूमि वाले, ये सब उक्त स्त्यान वृद्धि आदि तीन प्रकृतियों के अनुदीरक है। हाँ, इनके वो सारे अनुदीरक हैं। मिथ्या दृष्टि से लेकर अप्रमत्त गुणस्थान के अभिमुख हुआ अंतिम समयवर्ती प्रमत्त संयत तक साता व असाता का वेदनीय की उदीर्णा के योग्य होता है। तो साता का उदय और असाता का उदय टर्न बाय टर्न रहता है, तो उदीर्णा भी उनमें से जो उदय रूप है उसकी उदीर्णा भी चलेगी वहां पर अंतिम समय तक। यहाँ अवली वाला नियम नहीं है, क्योंकि आगे उदय चलता है परंतु उदीर्णा नहीं होती। साता असाता का उदय तो आगे 14वें तक चलेगा परंतु उदीर्णा 6ठे तक ही है, इसलिए वहां अवली वाला नियम नहीं लगाया। सम्यक्त्व के अभिमुख हुए अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि तक मिथ्या दृष्टि जीव ही मिथ्यात्व प्रकृति का उदीरक होता है। अंतिम समय तक हो मिथ्यात्व प्रकृति का उदय मिथ्या दृष्टि के ही होता है, इसलिए वही इसका ही लगाया, वही जीव इसका उदीरक कहलाया। हाँ देखो ये कहते विशेष इतना है कि उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति में एक आवली के शेष रहने पर उदीर्णा नहीं होती। पहले तो जनरल बात बताई, कौन सी जनरल बात बताई? मिथ्यात्व में से तो वेदक भी होता है ना, तो वहां तो कोई वो अंतर करना या पहली स्थिति दूसरी स्थिति ऐसा कोई सवाल नहीं है। उपशम समय तो प्राप्त होता है, तो हमने देखा था कि मिथ्यात्व के जो निषेक है उसमें अंतर पड़ जाता है, अंतर के परमाणु जो है निषेक है मिथ्यात्व के दर्शन होने के वो नीचे आते हैं और कुछ ऊपर चले जाते हैं और बीच में गैप हो जाती है। तो उपशम होता है ना, ऊपर जो है उसका अंतर्मुहूर्त में उसका उपशमित किया जाता है, उदय के अयोग्य किया जाता है, और नीचे जो प्रथम स्थिति में है उसका उदय चलता है। तो उदय चलता है तो वहां तो ऊपर से नीचे भी वो आगाल प्रत्यागाल भी चलते हैं ना, ऊपर से नीचे आते रहते। द्वितीय स्थिति में जब तक उपशम पूरा नहीं हुआ है तब तक द्वितीय स्थिति में से पहले स्थिति में वो मिथ्यात्व के परमाणु अधिक मात्रा में गुणश्रेणी रूप से आते रहते, और गुणश्रेणी रूप से आते तो उदय में भी आएंगे, तो वहां अधिक मात्रा में उसकी उदीर्णा भी चल रही है, क्योंकि अपकर्षण होकर गैप को उल्लंघन कर नीचे दिए जाते। क्योंकि पहली स्थिति भी अंतर्मुहूर्त वाली है और गैप छोड़कर ऊपर ये निषेक है, अंतर करने के बाद एक अंतर्मुहूर्त तक एक समय में थोड़े उपशमित किए, दूसरे समय में थोड़े किए, तीसरे समय में किए, जब ये उपशम का कार्य चल रहा है उसके दौरान भी ऊपर से परमाणु नीचे आते रहते हर समय असंख्यात गुणा, और उसकी वो गुणश्रेणी रूप से भी रचना होती रहती है। अब यहाँ जो है और यहाँ के भी आवली के ऊपर के परमाणु भी आवली में आते ही रहे थे, ऊपर से तो आए ही थे, अब ये भी रुक जाता है कुछ काल बाद, आगाल प्रत्यागाल ये ऊपर का नीचे आना भी रुक जाता है। अब ये नीचे के जो है आवली के ऊपर वाले वो आवली के नीचे यानी आवली में आकर मिलेंगे, ऐसे कब तक हो सकता है? आवली और एक समय है तो वहाँ वो अंतिम वो उसका लौट आया, अब आवली जितने ही निषेक शेष रहे तभी उसकी उदीर्णा नहीं होगी। तो ये आवली वाला नियम उपशम सम्यक्त्व के लिए है, क्षायिक सम्यक्त्व के लिए होगा कि नहीं होगा? वेदक को हाँ, क्षायिक वाले को होगा कि नहीं होगा? क्षायिक को है ही नहीं ना, उदय उदय का सवाल ही नहीं है, मिथ्यात्व के उदय की बात है तभी तो उदीर्णा होगी। वेदक हाँ कौन सा सम्यक्त्व के अभिमुख अंतिम, वो तो जनरल उन्होंने वो बात की है वेदक के लिए होगा। हाँ क्षायिक के लिए तो कोई सवाल ही नहीं, क्षायिक वाला ऑलरेडी कौन है? सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है क्षौपशम वाला और वो क्षायिक हो रहा है, तो उसके तो सवाल ही नहीं है ना। सम्यक प्रकृति का उदय है तो मिथ्यात्व की उदीर्ण होना होने का सवाल ही नहीं है, उसके सम्यक प्रकृति की उदीर्णा भले हो यहाँ सवाल किसका है? मिथ्यात्व प्रकृति के उदीरणा वाला सवाल है। देखो यहाँ लिखा है आगे, विशेष इतना है कि सम्यक्त्व प्रकृति का क्षय अथवा उपशम करने वाले जीवों के सम्यक्त्व की स्थिति के उदयावली में प्रविष्ट होने पर उसकी उदीरणा संभव नहीं है। सम्यक्त्व ने सम्यक प्रकृति की बात चल रही है यहाँ पर, ये समझ में आया कुछ? देखो दर्शन मोहनीय के तो मिथ्यात्व प्रकृति की बात बताई, उसके बाद विशेष इतना है कि सम्यक्त्व प्रकृति का क्षय अथवा उपशम करने वाले जीवों के, जब हम क्षायिक समय दृष्टि होते हैं कहते हैं तो क्या होता है, प्रकृति कौन सी उदय रूप है? वहां पर सम्यक प्रकृति उदय रूप है क्योंकि वो क्षोपशम सम्यक दृष्टि है। अब वहाँ मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु उस रूप होते रहते हैं और सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है। सम्यक प्रकृति में भी अपकर्षण द्वारा वो सारी जो स्थिति है वो घटते घटते नीचे अंतर्मूर्त रहती है, फिर उससे भी नीचे घटेगी, तो उसका जब आवली काल शेष रहेगा वो जब उदयावली में आएगी पूरी ही, तो उसकी भी उदीरणा रुक जाएगी सम्यक तो प्रकृति। हाँ द्वितीय उपशम कह सकते हैं क्योंकि वहाँ सम्यक प्रकृति के उदय रूप है, वहाँ मिथ्यात्व के उदय की कोई सवाल नहीं है। द्वितीय उपशम भी जो होता है वो क्षयोपशम में से होता है, और ये जो बात बताई थी उन्होंने पहले सम्यक्त्व के अभिमुख वाले की बात बताई। अब आगे 56 पृष्ठ पर अनंतानुबंधी चतुष्क का ये उदीरक कौन है, उसका उदय कहाँ कहाँ पाया जाता है? अभी हमको उदय की याद करनी पड़ेगी बार बार, पहले और दूसरे में, तो उदीरक कौन होगा पहले और दूसरे वाला? जहाँ उदय है ना। देखो अनंतानुबंधी चतुष्क का मिथ्या दृष्टि और संसाधन समय दृष्टि जीव उदीरक होता है। ये आसान है अभी तो, गुणस्थानों में ये प्रकृति मोहनी की तो गुणस्थानों में घटित होती है ना, उसकी तो आसान है। अप्रत्याख्यान चतुष्क के वो कहाँ से कहाँ तक है? हाँ क्योंकि अकेले चौथे में नहीं कहना, पहले में तो चारों का उदय है तो चारों की उदीरणा वहाँ होगी। तो अप्रत्याख्यान चतुष्क के मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत समय दृष्टि के अंतिम समय तक के जीव उदीरक होते हैं। ये अंतिम समय तक वाला लिया, प्रत्याख्यान चतुष्क के मिथ्या दृष्टि से लेकर संयता संयत गुणस्थान के अंतिम समय तक के जीव उदीरक होते हैं। ये चार 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 बता दिया उन्होंने। नपुसक वेद का उदीरक कौन होता है? हाँ, उसके उदीरक सभी नपुसक जीव होते हैं। जिनको नपुसक वेद का उदय है वे ही होंगे, इसलिए बताया नपुसक जीव होते हैं। विशेष इतना है कि क्षपक और उपशामक नपुसक जीव नपुसक वेद की प्रथम स्थिति के उदयावली मात्र शेष रहने पर नपुसक वेद के अनुदीरक होते हैं। देखो जब हमने देखा था नवे गुणस्थान में जाता है वो, हाँ तो वहाँ भी वो बीच में अंतर किया जाता है, चारित्र मोहिनी में अंतर किया। द्वितीय उपशम करता है वो तो दर्शन मोहिनी में उसने अंतर कर दिया, और यहाँ चारित्र मोहनी में भी अंतर करता है। चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियाँ हैं, उसमें कितनी प्रकृतियाँ उदय रूप होती है? एक कोई भी वेद, कोई भी एक, यानी एक कषाय और एक वेद, दो प्रकृतियाँ उदय रूप है, और बाकी सभी जो है हाँ वो तो गैप है, उसके आगे नीचे ऊपर है, यानी उदय में उदयावली में नहीं, उदयावली के ऊपर है अन्य प्रकृतियाँ। ये जो सारी है ना प्रत्याख्यान वगैरह वो जो सारी अंदर पड़ी है, परंतु ते उदयावली के ऊपर है, वो संज्वलन रूप से जो कुछ परिणमित होकर आते उसकी अभी क्या होता है उसकी बात हमारा विषय नहीं है। अभी तो हमारा वहाँ उदय रूप कौन कौन सी है, एक वेद है उदय रूप, और एक कोई क्रोधमान मायलोभ में से संज्वलन में से उदय रूप है। अब उसमें क्या होता है, पहले में पहले वेदों की उपशमना होती है, क्योंकि पहले वेद में सवेद में से अवेद हो जाता है। तो जब उसके एक आवली काल वेद का उदय बाकी रहा तब उसकी उदीर्णा रुक गई, अभी आवली काल तक उसका उदय चलेगा। शेष सब नपुसक जीव उसके उदीरक ही होते हैं, यानी कौन से अनुदीरक होते हैं, वो आवली छोड़कर। नवे गुणस्थान में उदय रूप वेद जिसका नपुसक जीव जो है, उनका नपुसक वेद है उदय रूप, और उसका जब एक आवली उदय रूप बाकी रहता है तब वे अनुदीरक होते हैं। उसके पहले पहले सभी जीव उसके उदीरक है। जिस प्रकार से नपुसक वेद के उदीरकों का कथन किया गया है, उसी प्रकार से स्त्री और पुरुष वेदों के भी उदीरकों का कथन करना चाहिए। उनमें भी यही है, सवेद भाग में आते हैं, जब उदय रूप आवली काल शेष रहता है तो उदीरणा रुक जाती है, उसके पहले पहले तक सभी जीव अपने अपने वेद के उदीरक है। हास्य रति अरति शोक भय व जुगुप्सा, इसके उदय की विच्छित्ति कहाँ होती है, आठवें में होती है। इन प्रकृतियों का उदीरक मिथ्या दृष्टि से लेकर अपूर्वकरण के अंतिम समय तक रहने वाला जीव होता है। उदीरणा अंतिम समय तक बताई है, यहाँ आवली वाला नियम नहीं बताया। विशेष इतना है कि ये आवली वाला नियम क्यों नहीं बताया होगा, हाँ संक्रमित होते हैं ना अन्य रूप से होकर, फिर उसके क्षय हो जाता है, शेनों का क्षय जो है। विशेष इतना है कि देव के उत्पन्न होने के प्रथम समय से लेकर अंतर मुहूर्त तक सातावेदनीय हास्य और रति इनकी उदीरणा नियम से होती है, यानी अन्य की जो अरति शोक वगैरह की उदीरणा नहीं होगी, असाता की नहीं होगी, देवों में नहीं होगी ऐसा नहीं कहा, पहले अंतर मुहूर्त की बात चल रही है, ये इसी की, क्योंकि उसी का उदय होगा। देवों के पहले अंतर मुहूर्त में सातावेदनीय हास्य रति इन्हीं का उदय है, उसी की उदीरणा भी होगी। आगे वह भाज्य है, भाज्य ने ऑप्शनल, आगे कभी साता का कभी असाता का भी हो सकता है, जिसका उदय है उसी की उदीरणा होती है, और उसके बाद वो ऑप्शनल है, वो चेंज भी हो सकता है, अर्थात आगे वह होती भी है और नहीं भी होती है। तथा नारकी के उत्पन्न होने के प्रथम समय से लेकर अंतर मुहूर्त तक असाता वेदनीय अरति और शोक की उदीरणा नियम से होती है। तीन संज्वलन कषायों की उदीरणा, पहले तीन को छोड़ा था, मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्तिकरण काल में अपने अपने बंद अध्यवसाय स्थानों के अंतिम समय तक होती है। कहाँ तक, अपना अपना बंद अध्यवसाय स्थान है नहीं क्या, देखो क्रोध मान माया लोभ के अपने अपने बंद के स्थान होते हैं, पहले जहाँ सवेद भाग है वहां तक ही तो वेद का बंद होता था, पुरुष वेद का, के नपुसक वेद का भी होता है बंद, पहले गुणस्थान में विच्छित हुए। तो यहाँ तो भले वेद का किसी का भी उदय क्यों ना हो, स्त्री वेद पुरुष वेद या नपुसक वेद, बंद तो पुरुष वेद का होता था, जहां तक उदय है वहां तक बंद भी होता था, तो उसको उसका बंद सवेद भाग का। उसके बाद एक एक अंतर मुहूर्त में क्रोध का अभी चारों का बंद होता है, क्रोध मान माया लोभ चारों का बंद होता है, फिर क्रोध का बंद रुक जाता है और तीन का बंद होने लगता है, फिर मान का रुकता है, फिर माया का रुकता है, और लोभ का बंद होता रहता है। लोभ का बंद कब रुकेगा, हाँ लोभ का बंध क्योंकि बाद में सूक्ष्म लोभ है ना, सूक्ष्म लोभ से बंधता नहीं है, बाद में उसका उदय है सूक्ष्म लोभ का। बंध कहाँ तक है? नौवे के अंत तक। तो एक क्रोध बंधक काल हुआ, एक मान का बंधक काल, एक माया का और एक लोभ का अंतिम। तो इसलिए अपने अपने बंध अध्यवसाय स्थान के हैं। हाँ, अकेले संज्वलन की बात है। देखो ये जो सारे हमने गुणस्थान की अपेक्षा बात चल रही, पहले अनंतानुबंधी को लिया, पहले दूसरे दो गुणस्थानों में होते थे, उसके पहले तो मिथ्या दृष्टि की बात उन्होंने पहले पेज पर देखी थी। देखो अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि, देखो मिथ्या दृष्टि वो मिथ्यात्व का ही उदीरक है, पहले गुणस्थान की बात थी। फिर पहले दूसरे गुणस्थान में कौन सी है? अनंतानुबंधी और वो मिथ्यात्व, दोनों के उदीरक है। फिर आगे चलकर ये चौथे तक कौन से है, पांचवे तक कौन से, उसकी बात की थी प्रत्याख्यानावरण तक। फिर वो वेदों का दिख नौवे में होती है, हास्य वगैरह है वो तो आठवें में होती है, उसकी बात की थी। तो अभी हम जो देख रहे हैं संज्वलन की बात, फिर पढ़ती हूँ इसकी मैं। तीन संज्वलन कषायों की उदीरणा मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्तिकरण काल में अपने अपने बंध अध्यवसानों के अंतिम समय तक होती है। अपना अपना बंध अध्यवसान यानी अपने अपने बंध का जो वहाँ परिणाम होते हैं उसको उदय की अपेक्षा क्रोध वेदक काल ऐसा भी कहते हैं, क्रोध वेदक काल, मान वेदक काल। तो क्या क्रोध वेदक काल में कौन से कर्म का उदय होगा? हाँ, कोई भी, चार में से कोई भी, परंतु वहां बंध चारों का है। फिर जब क्रोध वेदक काल समाप्त होता उसके आगे क्रोध का उदय भी नहीं बंध भी नहीं होगा। तो तीनों का, वहां भले लोभ का भी उदय हो, मान वेदक काल में लोभ का भी उदय हो सकता है किसी के, क्योंकि शुरू से ही वही उदय चलेगा अंत तक। तो इस तरह से उसके बंध रुकते हैं एक एक करके। अभी संज्वलन लोभ की उदीरणा बताएंगे। संज्वलन लोभ की उदीरणा मिथ्या दृष्टि से लेकर अंतिम समयवर्ती सकषाय होने में एक समय अधिक आवली मात्र काल के शेष रहने तक होती है। दसवें गुणस्थान वाला जो सूक्ष्म लोभ का उदय है वहाँ भी वो उदीरणा वाला चलता ही है कार्य, क्योंकि वहाँ भी वो गुणश्रेणी वगैरह चल रही है। उदयावली में भी परमाणु दिए जाते हैं। जब आवली प्रमाण ही निषेक शेष रहे अभी उसके, तो क्या होगा? उदीरणा रुक जाएगी। और उपशम करने वाले की भी, जो द्वितीय स्थिति में है वो सारे उपशमित हो रहे हैं, और पहले स्थिति वाले क्या होगा? उदय आकर खिर जाएंगे, वहां भी आवली शेष रही तो उसकी उदीरणा रुक जाएगी। नारकायु की उदीरणा सब नारकियों में होती है, विशेष इतना है जिस नारक जीव के अंतिम समयवर्ती तद्भवस्थ होने में आवली मात्र काल शेष रहा है, यानी उसके मरण का काल अभी आवली बाकी है, उससे लेकर अंतिम समयवर्ती नारक तक के उसकी उदीरणा नहीं होती। ये हर एक में ऐसा ही समझना। ये तो समझाने के लिए उन्होंने उत्तर प्रकृति से नरकायु के ऊपर पहले घटित करके बताया। प्रत्येक आयु में ऐसी बात होगी, पहले समय से लेकर उसकी उदीरणा चलती है और मरण के आवली काल पहले रुक जाती है। जैसे नारकायु की उदीरणा की प्ररूपना की है वैसे ही शेष तीन आयु कर्मों की भी उदीरणा की प्ररूपना करनी चाहिए। विशेष इतना है कि तिर्यंच मनुष्य और देव आयुओं के उदीरक यथाक्रम से तिर्यंच मनुष्य एवं देव ही होते हैं, यानी जो जीव जिस आयु में है उसी की उदीरणा करेगा, वो बांधी हुई आयु की उदीरणा नहीं करेगा, ऐसा कहना चाहते हैं। जिस आयु का उदय है उसी की उदीरणा होगी। मनुष्यायु की मिथ्या दृष्टि से लेकर प्रमत्त संयत गुणस्थान तक उदीरणा होती है। हमने पहले देखा था आयु का उदय तो 14वें के अंत समय तक है, उसकी उदीरणा 6ठे तक ही होती है। मात्र मरण काल में अंतिम आवली को छोड़कर अन्य काल में ही उदीरणा होती है। छठवें वाले के भी मरण नजदीक है अवलिकाल, तो वहां भी उसकी उदीर्णा रुक जाती है। किसी भी गुणस्थान में क्यों न हो, मरण काल जब नजदीक आता है अवलिकाल शेष रहने पर, तो उसकी आयु की उदीर्णा रुक जाती है। एक अवली पहले तक उसकी उदीर्णा होती है। नरक गति नाम कर्म, अभी नाम कर्म में नरक गति नाम कर्म लिया है। नरक गति नाम कर्म के सभी नारकी उदीरक होते हैं। तिर्यंच गति नाम कर्म के सभी तिर्यंच योनि वाले जीव उदीरक होते हैं। मनुष्य गति नाम कर्म के उदीरक सभी मनुष्य हो गए कि नहीं हो गए, हाँ, अयोगी को छोड़कर, क्योंकि तेरहवें के अंत में उसकी विच्छुति हुई उदीरणा की। अयोगी जिनको छोड़कर शेष सब मनुष्य और मनुष्यनिया होती है। देवगति नाम कर्म के उदीरक सब देव और सभी देवियां हैं। एकेंद्रिय जाति नाम कर्म के सब एकेंद्रिय जीव, द्विंद्रिय नाम कर्म जाति नाम कर्म के सब द्विंद्रिय जीव, तीन्द्रिय जाति नाम कर्म के सब तीन्द्रिय जीव, चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्म के सब चतुरिंद्रिय, चतुरिंद्रय हुआ है, चतुरिंद्रिय जीव, तथा पंचेंद्रिय, ये छह के ऊपर का बिंदी निकालना, उंद्री लगाए ना डबल हो गया वो, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के सब पंचेंद्रिय, यहां भी ऐसा ही हुआ है, सब पंचेंद्रिय जीव उदीरक होते हैं। विशेष इतना है कि पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म की उदीरणा अयोगी गुणस्थान में नहीं है। चौदहवें तक नहीं है, चौदहवें में है ही नहीं है, तेरहवें के अंत समय तक, क्योंकि आगे उदय चल रहा है। चौदहवें में उनका उदय चल रहा है, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय चौदहवें वाले को है कि नहीं है, के रुक गया है ना, हाँ हाँ, तो वहां उदय तो आगे चलेगा, तो उदीरणा कहां तक होती है, तेरहवें के अंत समय तक, वहां आवली वाला नियम नहीं लगाना। औदारिक शरीर नाम कर्म का उदीरक अन्यतर जीव होता है जो कि औदारिक शरीर का निर्वर्तक है। औदारिक शरीर का निर्वर्तक है ने औदारिक शरीर की रचना करने वाला, नहीं नहीं वो तो पूरा ही तेरहवें के अंत तक होगा उसका भी, पहले समय से लेकर। अन्यतर जीव होते जो कि औदारिक शरीर का निर्वर्तक होता है। औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय कहां से शुरू होता है, कौन सा पहला समय, आहार शुरू किया, क्योंकि जब वो विग्रह गति में नहीं होता, विग्रह गति में शरीर नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता। शरीर नाम कर्म है, संस्थान नाम कर्म है, प्रत्येक साधारण शरीर नाम कर्म का उदय वहां जो पहुंचता है जहां जन्म के स्थान पर, उस समय से उसका उदय शुरू होता है। और जब तक उदय उसकी वो उदीरणा वगैरह सब चलेगी, नाम कर्म की बात चल रही है, शरीर में कुछ नहीं लेना देना, ये शरीर के परमाणु को मत सोचो, नाम कर्म के उदय और उदीरणा की बात चल रही है अपनी। तो उसकी उदीरणा कहां तक होगी, हाँ, औदारिक शरीर नाम कर्म की उदीरणा कहां तक होगी, हाँ, तेरहवें के अंत तक, क्योंकि वहां तक उसका उदय है। चौदहवें वाले को उदय है कि नहीं है, शरीर नाम कर्म का उदय रुक गया है, नहीं उपांत नहीं, बस हाँ राशि। तेरहवें की विच्छित्ति, उदय विच्छित्ति हमें सीखी थी पहले, बहुत पहले सीखी थी ना, बहुत कितने की है इतने तो बताओ, कितनी प्रकृतियां, वो आपको क्षय वाली प्रकृति याद आ रही है 75 और 13, उसकी याद मत करो, तेरहवें की बात करें मैं। तेरहवें गुणस्थान में उदय की विच्छित्ति है इनके, निकाली उन्होंने नामावली 29 या 30 कही थी ना, हाँ 30, क्योंकि किसी को सात आए किसी को असात आए, इस तरह से हमने 30 देखी थी, तीस या 29 ऐसी वहां पर होती है। देखो तो अवतारिक शरीर नाम कर्म का उदीरक अन्यतर जीव होता है जो कि अवतारिक शरीर का निर्वर्तक है। वैक्रियक शरीर नाम कर्म का उदीरक अन्यतर जीव होता है जो कि वैक्रियक शरीर का निर्वर्तक है। आहार शरीर नाम कर्म का उदीरक अन्यतर जीव होता है जो कि आहार शरीर का निर्वर्तक है। निर्वर्तक है कहाँ, वो उसके वो बाद में मूल शरीर में प्रवेश करने पर उदीरना होगी कि नहीं होगी। हाँ, वो आहारक शरीर के परमाणु चले जाएंगे उसकी बात यहाँ नहीं होगी। हमने वो परिशातन कृति वगैरह देखी थी, उसमें वो की बात आई थी, वो शरीर के परमाणु जड़ जाते बाद में अंतर्मूर्त तक, उसकी बात यहाँ नहीं है। नाम कर्म के उदय की और उदीरणा की बात चल रही है। तो आहारक शरीर नाम कर्म का उदय है तब तक उसकी वो रचना भी होगी, वो जाएगा मूल शरीर में प्रवेश करेगा, अभी उसका उदय रुक जाएगा, उसकी उदीरणा भी रुक जाएगी। निर्वर्तक यानी रचना करने वाला। कहाँ आहारक शरीर बना और बाद में जीव मूल शरीर में आया तो वो परमाणु खिर जाते हैं, निकल जाते हैं। तेजस और कार्बन शरीरों का उदीरक अन्यतर जीव होता है जो कि योग से सहित है, यानी 13वें तक उदीरक होता है, क्योंकि पहले हमेशा ही उसकी उसका उदय चल रहा है, उसका उदीरक भी होता है। कार्मण शरीर की बात चल रही है, कर्मों की उदीरणा की बात यहाँ नहीं हो रही। कार्मण शरीर जो नाम कर्म है उसकी उदीरणा भी हर समय चलती है। तो 13वें के अंत तक क्या कहा, आगे भी मरण तक हर समय वो नए परमाणु लेके उसके रचना चलती रहती है। उसकी आहारक शरीर जब तक बना है मरने तक, यानी अभी वो इधर उसकी विच्छित्ति ले हो, उसका जो लिमिट है उसकी बात करो, जब तक उसका उदय है। शरीर है औदारिक शरीर, नाम कर्म का उदय नहीं है। देखो नाम शरीर नाम कर्म के उदय में उस जाति के ग्रहण होता है। ये योग जो है, योग काहे से उत्पन्न होता है, शरीर नाम कर्म के उदय में। कार्मण शरीर नाम के उदय में जो योग है वो कर्म का ग्रहण होता है। तेजस शरीर नाम कर्म के उदय में वो तेजस शरीर के परमाणु का ग्रहण होता है। औदारिक वैक्रिय आहारक शरीर नाम कर्म के उदय में उन जाति के परमाणुओं का ग्रहण होता है। अब आहारक में भी मरण इस तरह से लेना कि भी आहारक के काल में भी कोई मर गया तभी उसका आहारक नाम कर्म का उदय रुक जाएगा, ना ही उसकी वहां पर उदीर्णा होगी। जब औदारिक शरीर नाम कर्म का आहारक शरीर नाम कर्म का उदय चल रहा है उतने काल में औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय रुक जाता है। हाँ, तो ये जब तक योग से यानी सहयोगी तक, जब से ये क्या लिखा, लिखा ना जब तक योग से सहित है, उसका अर्थ क्या हुआ, अयोग में नहीं है। और जो योग वाले कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 13वें तक, वो सारे एक इंद्रिय भी लेना, सब कोई भी लेना। हाँ, जैसे शरीरों की उदीरणा का कथन किया है वैसे ही उनके अंगोपांग नाम कर्मों की उदीरणा का भी कथन करना चाहिए। इसी प्रकार से 6 संस्थानों और वज्रश्रव वज्रनाराज सहनन की उदीरणा का भी कथन करना चाहिए। ये वज्र वृषभ वज्रनाराज को ही क्यों लिया यहाँ पर, हाँ उदय की विच्छित्ति 13वें के अंत में है। हाँ, 6 संस्थानों की सहनन में आपको संस्थान कहना था। हाँ, 13वें तक ये 6 संस्थानों का उदय हो सकता है, सामान्य से बात है। तीर्थंकर होगे तो उनके वो समय चतुरस्र संस्थान होगा तीर्थंकरों के। हाँ, बाकी तो 6 संस्थान से केवली तो हो सकते हैं। अभी यथा बताते हैं, शेष सहनन नाम कर्मों का उदीरक उनका निर्वर्तक होता है। उनका निर्वर्तक यानी जिसका उसका उदय चल रहा है, उसकी रचना करने वाले जो होंगे उसके ही वो उदीरक है। यथा वैकिरेक शरीर की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत समय दृष्टि तक होती है। आपका जो प्रश्न था ना, क्या पर्याप्ति काल में ही उसका उदीरक समझना का, उसका उत्तर आया इसमें। कैसे आया, कैसे आया? नहीं देखो, वैकिरेक की बात कर रहे हैं अभी, यहाँ देव और नारकियों की बात कर रहे हैं। तो चारों ही गुणस्थान में उदीरक कहाँ है? तीसरे में ही उदीरक है, यह अर्थ होता है। तो क्या पर्याप्ति के पूरी नहीं हुई वहां तीसरा गुणस्थान संभव है? तो तीसरा गुणस्थान कब संभव है? पर्याप्त काल में। और यहाँ से चारों गुणस्थान बता दिए, तो निर्वर्तक किसको कहना? वैकिरिक शरीर का निर्वर्तक वो पहला समय से लेकर अंत समय तक। वैकिरिक परमाणु ले रहे ना वो जीव, शरीर की रचना हर समय चल रही है, नए नए परमाणु हर समय लेकर, उसको निर्वर्तक कहा है। हर समय शरीर के परमाणु लेता है तो वो उसका शरीर पहले समय से मरण के समय तक, तो वो वैकिरेक शरीर नाम कर्म का उदीरक भी है वहां पर, बहु के अंत तक। उसमें गुणस्थान कितने हो सकते हैं देवनारकी में? चार, इसलिए चार गुणस्थान को लिया है। इनका जो प्रश्न था कि ये जो निर्वर्तक कहाँ है, वो पर्याप्तियों की रचना को निर्वर्तक कहा है कि नहीं कहा, तो ये चारों ही गुणस्थान लिए, इससे क्या सिद्ध होता है? तीसरा गुणस्थान भी इंक्लूड कर दिया उन्होंने, यानी वो पर्याप्ति काल अपर्याप्त अवस्था में तो तीसरा गुणस्थान किसी को होता ही नहीं है, और उस समय भी शरीर का तो निर्वर्तक बताया है, तो पर्याप्त अवस्था में भी उसको निर्वर्तक कहा, ये सिद्ध होता है। यानी हमें जो प्रश्न उठा था उसका उत्तर हमें ऐसे, यानी इस तरह से हम डिराइव कर सकते उसको। उन नाम कर्मों का पर्टिकुलर, मूल प्रकृतियों का उदय तो हर समय चल रहा है, परंतु विशिष्ट प्रकृतियों का नाम कर्मों के उदय में तो हमने बहुत देखे ना, उसके कुछ काल देखे थे, कितने थे, उनके नाम क्या थे। नाम कर्मों के उदय की अपेक्षा हमने अलग अलग काल देखे थे, काल काल कित कौन से काल में? हाँ बोलो, हाँ बाकी लास्ट याद है। हाँ तो कहाँ तक है वो भाषा पर्याप्ति काल? नहीं, वो एकांत अनिरुद्धि योग की बात है। हाँ ये भाषा पर्याप्ति काल तो बताया आपने, छह ने भाषा पर्याप्ति पूरी होने के काल से लेकर मरण तक, उसको भाषा पर्याप्ति काल कहा। अभी उल्टा आना है ना नीचे एक एक, पहले में पहले विग्रह गति का काल है। विग्रह गति में तो वो 20 प्रकृतियों के उदय रूप स्थान होता है, विशिष्ट प्रकृतियों का वहाँ उदय नहीं, शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होता है किसी भी, यानी किसी ने औदारिक तेजस कर्मण को छोड़कर, ना औदारिक का होता है ना वैकिरिक का। अंगोपांग का उदय नहीं है, संस्थान का उदय नहीं है, सहनन का उदय नहीं है, ये परघात विहाय गति का उदय नहीं है, उच्छ्वास का उदय नहीं है, स्पर्श रस गंधवर्ण का भी वहां पर वो तो होता है उदय पहले नहीं है, नहीं नहीं वो तो होता है, मगर ये जो सारी जो बातें हैं शरीर पर्याप्ति काल के बाद विशिष्ट नाम कर्मों का उदय चालू होता है, तो उदय अपेक्षा उसके इतने वेरिएशन है। एक तो मिश्र अवस्था हुई, फिर शरीर पर्याप्ति के काल, और उच्छ्वास पर्याप्ति, और भाषा पर्याप्ति, ऐसे पांच काल बताए थे उदय की अपेक्षा। अभी मुझे भी पढ़कर कितना उतना ही समय हुआ, अभी मैंने तो निकाल के देखा भी नहीं है। ऊपर जाता है, आप कहते हैं हम भी मराठी में पढ़े ना, जब कॉलेज में गए तो 2 महीने तक कुछ नहीं समझा, सब इंग्लिश में फटफट फटफट प्रोफेसर आते थे, और स्कूल में तो कितना होता है ना, टीचर्स के साथ अपनी पहचान भी होती है क्या? चलो यथा देखो, फिर पढ़ते यथा के बाद वैक्रियक शरीर की उदीर्णा। ये शरीर की जब लिखा है शरीर नाम कर्म की समझना, मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत समय दृष्टि तक होती है। इसी प्रकार वैक्रियक शरीर अंगोपांग की भी उदीर्णा जानना चाहिए। वो शरीर और शरीर अंगोपांग का उदय चालू होता है एक साथ, और उसकी तब तक उसकी उदीर्णा भी अंत समय तक होगी। आहारक द्विक की उदीर्णा प्रमत्त संयत में ही होती है। वज्र नाराच और नाराच सहनन की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर उपशांत कषाय गुणस्थान तक होती है। उदय की उच्छिति 11वें में है ना, उसकी 11वें में है। 11वें के उदय की उच्छिति क्या है? अभी पहले से लेकर 13वें तक उदय की उच्छिति देखेंगे। पहले गुणस्थान में उदय की विच्छित्ति क्या है? अरविंद भाई के पास है ना लिखा, अभी अभी लिखा हुआ मत पढ़ना। मिथ्यात्व, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण और आतप। ये कोई कोई क्या कहते हैं, हम पहले और दूसरे में जो बताते हैं ना, दोनों को मिलकर नौ को यहाँ का है, दो मत है उसमें। अभी दूसरे, पहले ही मत के अनुसार दूसरे में कौन सी? अनंतानुबंधी के चार, हाँ, एकेंद्रिय, स्थावर, बेंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय। तीसरे गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व के। चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, जो बंध कषायों में तो बंध और उदय हुए। हाँ, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, वैक्रेक, वैक्रेक अंगोपांग, हाँ, और हाँ, देवायु, नरकायु पहले लेना, फिर दो अनुपूर्वी जो बाकी है वो मनुष्य और तिरंज गत्यानुपूर्वी, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय। नहीं, अयशस् कीर्ति आती है वहां पर, अयशस् कीर्ति आती है, दुस्वर नहीं है वहां। दुस्वर की तो 13वें में है, हाँ, दुस्वर की, हाँ, कौन कौन सी है? दुर्भग, अनादेय और अयशस् कीर्ति। ये चौथे की उदय की उचित, ये सब उदीर्ण वहां वहां उसकी उसकी होगी, इसलिए मैं इसको याद कर रही हूँ। पांचवे में उदय की उचित प्रत्याख्यान आवरण चार, फिर तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु, नीच गोत्र और उद्योत। गत्यानुपूर्व यहाँ नहीं लेना है, क्योंकि उदय तो उसका विग्रह गति में होगा। पांचवे वाले को तो उदय नहीं होगा गत्यानुपूर्वी का। छठे में जो आपने स्त्यान वृद्धि की याद की ना आपने, तो स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, आहारक और आहारक अंगोपांग, ये छठे की उदय की उच्छित्ति। सातवें में सम्यक प्रकृति और तीन सहन नहीं, हाँ, अर्धनाराज, किलित और असंप्राप्त सुप्राट। आठवें में अभी हमने याद किया था हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा। नौवे में तीन वेद और तीन कषाय, संजोलन, क्रोध, मान और माया। उदय की बात चल रही ना, नहीं नहीं आप सुनो तो सही। दसवें में सूक्ष्म लोग। ग्यारहवें में अभी जो हमने पढ़ा दो सहनन, वज्र नाराज और नाराज सहनन। बारहवें में निद्रा और प्रचला पहले, फिर पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पांच अंतराय, ये अंतिम समय में। अब तेरहवें में, तेरहवें में या तो साता या असाता, दोनों ही लिए, किसी के साता किसी के अधना, इन्हें एक वेदनीय होता है। वज्र ऋषभ नाराज सहनन, निर्माण, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग सुभग नहीं, सुस्वर दुस्वर और विहाय गति, प्रशस्त और अप्रशस्त दो। हाँ? दोनों है, ये जोड़ी जोड़ी है ना, हाँ। उसके बाद औदारिक औदारिक अंगोपांग, तेजस कारमा, स्पर्श रस गंधवर्ण, हाँ, अगुर लघु उपघात परघात उच्छ्वास प्रत्येक शरीर, और कुछ रह गया बीच में? तीर्थंकर नाम कर्म का तो 14वें में निर्माण के लिया था, हाँ वो एक रह गया था। अच्छा, मेरी ऑर्डर गलत निकल गई ना, तो मैं अभी याद नहीं करूंगी। चलो अभी हम यहाँ देखेंगे, और तीन कुछ रह गए थे। हाँ, आप ये पढ़ने की बात कर रहे हैं। ऊपर से हम 11वें की बात की थी हमने, वज्र नाराज और नाराज सहनन की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर उपशांत कषाय गुणस्थान तक होती है, क्योंकि वहाँ उसका उदय है, उनकी उसकी उदीर्णा होगी। अर्ध नाराज सहनन, किलित सहनन और असंप्राप्ता सुरपाटिका सहनन की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत तक होती है। अभी हमने उदय की विच्छित्ति देखी थी ना, वहां पर ही उसकी उदीर्णा होती है। पांच बंधन और पांच संघातों की उदीर्णा की प्ररूपणा पांच शरीरों के समान है। वो बंधन और संघात उसी में इंक्लूड कर देते हैं, हम अलग से बताते भी नहीं उसको। वर्ण गंध रस और स्पर्श की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली तक होती है। आपने जो अभी संयोग केवली की बात की ना, उसमें छह संस्थान रह गए थे, तो हो जाते फिर 24 तक हमने गिने थे, और आगे छह संस्थान रह गए थे, वो 30 की बात हो जाती है। 30 की विच्छित्ति देखी थी ना हमने, मिला ना, हाँ उसको छोड़ा था बीच में। नरक गति प्रायज्ञानपूर्वी का, नरक गति प्रायज्ञानपूर्वी नाम कर्म का उदीरक प्रथम समयवर्ती नारक अथवा प्रथम और द्वितीय समयवर्ती नारक मिथ्या दृष्टि या असंयत समय दृष्टि होता है। ये दो ही गुणस्थान क्यों लिए? हाँ, सासादन वाला मरकर नरक में नहीं जाता है, इसलिए उसको नहीं लिया। और ये गत्यानुपूर्वी तो विग्रह गति में होता है, इसीलिए वो विग्रह गति में कौन कौन से उसको ही लेना है। हाँ, तीसरे में तो मरण ही नहीं है, चौथे में है, वो कहाँ जाने वाला चौथा होगा? हाँ पहला, और यहाँ एक समय और दो समय ही लिए, दो तीन मोड़ ने, तीन मोड़ तो सूक्ष्म एक इंद्रियों में ही होते हैं। हाँ, तो अधिक किसी को लगे तो दो मोड़, तो दो मोड़ में दो समय तक उसका उदय है, उदीर्णा भी है। तिर्य गति प्रायज्ञानपूर्वी नाम कर्म का उदीरक प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ अथवा प्रथम और द्वितीय समयवर्ती तद्भवस्थ तिर्यंच सासादन समय दृष्टि या असंयत समय दृष्टि, इसके लिए दो समय तक लिए। तिर्यंचों में ही प्रथम समय, द्वितीय समय और तृतीय समयवर्ती तद्भवस्थ मिथ्या दृष्टि होता है। तीन समय हमने देखे थे सूक्ष्म एक इंद्रियों में होते हैं, तो एक मिथ्या दृष्टि ही गुणस्थान है उसमें। मनुष्य गति प्रायज्ञानपूर्वी नाम कर्म का उदीरक प्रथम समय अथवा प्रथम और द्वितीय समयवर्ती तद्भवस्थ, या कौन कौन से गुणस्थान है? सासादन समय दृष्टि, असंयत समय दृष्टि और मिथ्या दृष्टि होता है। अभी अन्य तीन गति में तो तीनों ही गुणस्थान होते हैं विग्रह गति में। देवगति प्रायज्ञानपूर्वी नाम कर्म का उदीरक प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ अथवा प्रथम और द्वितीय समयवर्ती तद्भवस्थ मिथ्या दृष्टि, सासादन समय दृष्टि अथवा असंयत समय दृष्टि होता है। ये यहाँ तक पढ़ा, ये ख्याल में आ रही बात, तो बढ़ेंगे आगे। अगुरु लघु, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ और निर्माण इन नाम कर्मों की उदीरणा मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली गुणस्थान के अंतिम समय तक होती है। ये नित्योदयी प्रकृतियां है, हमेशा ही उदय रूप रहेगी। ये अगुर लघु स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ निर्माण, उपघात नाम कर्म की उदीर्णा मिथ्यादृष्टि से लेकर संयोग केवली के अंतिम समय तक होती है। विशेष इतना है कि उसकी उदीर्णा आहारक ही करता है, अनाहारक नहीं करता। आहारक है ने? हाँ, अनाहारक अवस्था में उसकी उदीर्णा नहीं होती। परघात नाम कर्म की उदीर्णा मिथ्यादृष्टि से लेकर संयोग केवली के अंतिम समय तक होती है। विशेष इतना है कि शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ जीव ही उसकी उदीर्णा करता है, क्योंकि परघात का उदय शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर शुरू हो जाता है। परघात के साथ साथ और कौन सी प्रकृति उदय रूप होती है वहां पर? विहाय गति, उच्छ्वास। तो उच्छ्वास ना पर्याप्ति पूरी होने पर हो जाएगा। विशेष इतना है, ये पढ़ा हमने, शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, उसके आगे उच्छ्वास नाम कर्म की उदीर्णा मिथ्याश्च दृष्टि से लेकर संयोग केवली के अंतिम समय तक होती है। विशेष इतना है, आन प्राण पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ जीव ही उसका उदीरक होता है, यानी उसका उदय भी किसके शुरू होता है? उच्छ्वास नाम कर्म का उदय वहां से। हाँ, उच्छ्वास पर्याप्ति पूरी होने पर। आतप नाम कर्म का उदीरक शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ बादर पृथ्वी का एक जीव ही होता है। आतप का उदय किसके है? बादर पृथ्वी का एक के ही है, अन्य किसी को नहीं होता। उद्योत का उदय किस किस के है? तिर्यंश, कहां से कहां तक के? एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय। एकेंद्रियों में उद्योत का उदय किसको है? एकेंद्रियों में बादल सबको होगा? पर्याप्त सबको होगा? हाँ, वो सब बताना पड़ेगा ना। हाँ, अग्नि और वायु को नहीं होगा, पृथ्वी जल और वनस्पति के पर्याप्तों को हो सकता है, तभी पढ़ेंगे इसको। उद्योत नाम कर्म का उदीरक शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ ही। देखो, आतप हो या उद्योत हो, शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर ही इन प्रकृतियों का उदय शुरू होता है। सबको नहीं, जिसको है उसको, जिसको उद्योत का उदय है उसी की बात है, उसी को उदीर्णा होगी। शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ ही एकेंद्रिय अथवा द्विंद्रिय आदि बांदर जीव होता है। प्रशस्त विहायगति नाम कर्म का उदीरक पंचेंद्रिय पर्याप्त संगी और असंगी मिथ्यादृष्टि जीव से लेकर संयोग केवली के अंतिम समय तक होता है। उसके नीचे जो द्विंद्रियादि है उनको क्या कहा है? अप्रशस्त का। इसी प्रकार अप्रशस्त विहायगति नाम कर्म की उदीर्णा का भी कथन करना चाहिए। अने अप्रशस्त विहायगति नाम कर्म का भी उदीरक कहां से कहां तक है? 1 से 13 तक। परंतु अभी उसमें द्विंद्रियादि लेना के नहीं लेना? नहीं लेना, अप्रशस्त विहाय गति में लेना। हाँ, एक इंद्रिय को लेना कि नहीं लेना? क्यों नहीं लेना? हाँ, विहाय गति का उनको उदय नहीं पाया जाता एक इंद्रियों में। एक इंद्रिय की जब उन्हें नाम कर्म का पैकेज बांधा था तो उसमें वो विहाय गति वाली नहीं आती है। विशेष इतना है, शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए सब त्रसकायिक संयोग केवली तक उसकी उदीर्णा करते हैं। शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही ये विहाय गति का भी, हमने परघात का भी देखा था ना उदय, वैसे विहाय गति का भी उसी के साथ उदय होता है। द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों को ये विहाय गति का उदय है, एकेंद्रियों के नहीं पाया जाता। त्रस नाम कर्म की उदीर्णा त्रसकायिक मिथ्यादृष्टि से लेकर संयोग केवली के अंतिम समय तक होती है। या त्रस का है कि उदय की विच्छित्ति कहाँ पर होती है? हाँ बोलो, त्रस नाम कर्म के उदय की विच्छित्ति कहाँ होती है? हाँ बोलो मयंक भाई, याद है? देवेंद्र भाई को नहीं याद है, विनोद भाई को नहीं। हाँ हाँ, चौदहवें के अंत में उपांत भी नहीं, अंत वो त्रस, पंचेंद्रिय त्रस बादर, उसका उदय चलेगा पर्याप्त सब। हाँ हाँ हाँ, कितने हैं उदय रूप? 12, 13। हाँ, 13 वो गत्यानुकूर्वी है ना, उसको उदय रूप नहीं लेना है। 13 का क्षय तो होता है अंतिम समय में, उसमें से 12 ही उदय रूप है। गत्यानुपूर्वी का उदय कहाँ है? वो है वहाँ पर, सत्ता में है, उसका क्षय होता है अंतिम समय में। अभी हम सेकंड लाइन पढ़ते हैं। बादर नाम कर्म की उदीर्णा, उदीर्णा, कोई भी उदीर्णा अयोगी में होती ही नहीं है। इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा था कि उदय कहाँ तक है। कोई की अभी हमने जो औदारिक शरीर नाम कर्म की बात की थी, उसका उदय 13वें तक है, उदीर्णा भी उसके वहां तक है। परंतु त्रस नाम कर्म जो है, उसका उदय तो 14वें के अंत तक है, परंतु उदीर्णा 13वें में ही हो जाती है, रुक जाती है। 13वें के आगे किसी की उदीर्णा होती ही नहीं है। परंतु उदय रूप जो हमने देखी थी प्रकृति, उसमें से अभी वहां 13वें में 12 ही प्रकृति उदय रूप है। चार आघाती है ना, चार आघाती में तो तीन तो वो बाकी बता देना, एक तो वेदनी है, कोई भी एक वेदनी है, मनुष्यायु है और उच्च गोत्र है, बाकी 9 है वो नाम कर्म की। कौन सी 9 है? पंचेंद्रिय त्रस बादर पर्याप्त सुभग आदेय यश कीर्ति तीर्थंकर, और एक कौन सी रहेगी? हाँ, मनुष्य गति। आयु तो पहले बताई थी, चार घाती है ना, अघाती। हाँ, नाम कर्म के 9 है, उसमें मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, ऐसे हम गति जाति याद करेंगे ना तो बराबर भूलते नहीं कुछ। तो ये वहां उदय रूप है, परंतु उनकी जो उदीर्णा की विच्छित्ति 13वें के अंत में होगी। उदय रूप भले भी 14वें में है, उदीर्णा रुक गई उसकी। हमने देखी ना मूल प्रकृतियों की अपेक्षा, हमने क्या देखा? नाम और गोत्र के उदय उदीर्णा की विच्छित्ति 13वें के अंत में होती है। अब देखें, अभी ये आसान लगेगा आपको। बादर नाम कर्म की उदीर्णा बादर मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली के अंतिम समय तक होती है। बादर का उदय है 14वें वाले को, उदीर्णा 13वें में हो गई, रुक गई। पर्याप्त नाम कर्म की उदीर्णा पर्याप्त नाम कर्म के उदय से संयुक्त मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली के अंतिम समय तक होती है। पर्याप्त का भी उदय है 14वें वाले को, उदीर्णा 13वें में रुक गई। प्रत्येक शरीर नाम कर्म की उदीर्णा प्रत्येक शरीर मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली के अंतिम समय तक होती है। ये प्रत्येक शरीर का उदय कहाँ तक है? 13वें तक ही है, नहीं वहां पहुंचते ही होता है प्रत्येक या साधारण शरीर नाम कर्म का जो उदय है, क्योंकि वो उसके उदय में वैसे वैसे वो शरीर की रचना आदि होती है। विशेष इतना है कि आहारक जीव ही उसका उदीरक होता है, अनाहारक नहीं होता। ये बात इससे क्या होता है, सिद्ध होता है? अनाहारक जो अवस्था है, कार्मण का योग वाला या 14वें वाला, तो उसमें प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता, तो उसकी उदीर्णा भी नहीं होती। 14वें में नहीं है उदय, विग्रह गति में भी नहीं है, ना प्रत्येक शरीर का है ना साधारण शरीर नाम कर्म का है। वो पर्याप्त अपर्याप्त का है भले, परंतु शरीर नाम कर्म का कोई भी उदय नहीं है, प्रत्येक साधारण का भी नहीं है। स्थावर नाम कर्म का स्थावर मिथ्या दृष्टि उदीरक है। सूक्ष्म नाम कर्म का सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव उदीरक है। अपर्याप्त नाम कर्म का, अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से संयुक्त मिथ्या दृष्टि उदीरक है। साधारण शरीर नाम कर्म का उदीरक अन्यतर साधारण कायिक आहारक जीव ही होता है। आहारक शब्द क्यों लगाया उसके पीछे? विग्रह गति में कारमान का योग अवस्था में उसको वो साधारण या प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता, वहां पहुंचने पर पाया जाता है। क्योंकि हमने विग्रह गति में 20 प्रकृतियां देखी थी, बाद में यह प्रत्येक या साधारण शरीर नाम कर्म जो कुछ अन्य अन्य कर्म है, जो सहनन वाले हैं, जो कोई वो संस्थान है, अवतारिक या वैकृत शरीर है, अंगोपांग है, वो वहां पर जाके शुरू हो जाते हैं। जैसे एक केंद्रियों में 24 और मनुष्य तीरियंचों में 26 देखे, देवनारकियों में 25 देखे, क्योंकि वहां सहनन नहीं होता। इसलिए ये बहुत पहले पढ़ा ना, ये अभी जरा इसमें काम आ रहा है। वो आपका टेबल है ना उदय की विच्छित्ति वाला, हाँ, वो सामने रखा है। अच्छा है, हाँ। वो नाम कर्म का भी उदय के का अलग अलग है, उसका टेबल वो भी रखना साथ में। नाम कर्म का कहाँ कितना उदय होता है, 20 वाला होता है वो, उसमें भी कितने ही नित्योदयी होती है, ध्रुवोदयी कहा उसको, हाँ, जैसे वो स्थिर अस्थिर वगैरह, वो ध्रुवोदयी हमेशा रहेगी। और ऑप्शनल कैसे होती है, चार गति में से किसी एक गति का उदय होगा, गति नाम कर्म का भी उदय चालू हो गया गत्यानुपर, पर वो ऑप्शनल है, पर चारों ही गति में जो होती है उसको वो ध्रुवोदयी कहेंगे। ध्रुवबंधी अलग है, ध्रुवोदयी अलग है। बंध हमेशा जिसका पाया जाता है वो ध्रुवबंधी कहेंगे, जैसे ज्ञानावरणादि जो है, जब तक विच्छित्ति नहीं होती तब तक उसका बंध होता ही है। ये ध्रुवोदयी की बात चल रही है नाम कर्म में, अन्य की बात नहीं चल रही है। यश कीर्ति नाम कर्म का उदीरक, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त ही होता है। एकेंद्रिय में भी है, क्योंकि हमने देखा था एकेंद्रियों में भी वो ऑप्शन है यश यश कीर्ति का। तेज कायिक व वायु कायिक को छोड़कर एकेंद्रिय बादर पर्याप्त जीव भी, किसको उदय है उसका, एकेंद्रिय बादर पर्याप्त, वो भी तेज और वायु को छोड़कर। जीव भी उसकी उदीरणा करता है। देखो एकेंद्रीय जीवों में भी इतनी तो ये पुण्य प्रकृतियों का उदय पाया जाता है। यश कीर्ति है, बादर है, पर्याप्त है, आतप है, उद्योत है, हाँ, ये सारी पुण्य प्रकृतियां कहलाएगी। तथा संयता संयत और संयोग केवली के अंतिम समय तक संयत जीव भी नियम से यश कीर्ति के उदीरक है। देखो क्या कहते हैं, पहले में पहले असंयतों में कौन कौन लिए हैं, एकेंद्रिय में तो दो छोड़कर बाकी द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्तों को छोड़ दिया है, ये है। उसके बाद संयता संयत को लिया और उसके बाद संयतों को लिया। संयतों में कौन कौन लेना है, संयतों में संयोग केवली तक सभी संयत ऐसा लिया, तीन भेद किए उन्होंने। असंयतों में एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय लिए, उसमें तेज का एक वायु का एक को निकाला, सभी पर्याप्त लिए। फिर आगे चलकर संयता संयत को भी लिया और संयतों को भी लिया, तो संयतों को कहां तक लेना है, संयोग केवली के अंतिम समय तक। उदय कहां तक है यश कीर्ति का, अभी हमने गिना है ना 14वें के अंत तक, परंतु उदीरणा कहाँ रुक गई उसकी, 13वें के अंदर। प्रकृति शुभ हो या अशुभ, कोई भी नाम और गोत्र सभी की उदीरणा 13वें के अंत में ही रुक जाती है, वहां तक ही होती है। देखो नियम से यश कीर्ति के उदीरक है, देखो ये अलग क्यों लिया, नियम से क्यों लिखा? पहले जो लिखे थे ना, यशकीर्ति के नाम कर्म के उदीरक, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त, और एक इंद्रिय वादर में जो वो दो छोड़कर, इनके तो ऑप्शनल है। किसी के यशकीर्ति का उदय पाया जाता है, किसी का अयशकीर्ति का उदय पाया जाता है। अभी अभी हमने चौथे गुणस्थान की वो नामावली देखी, किसकी? उदय की विच्छित्ति वाली। यशकीर्ति के उदय अयशकीर्ति मुझे कहना था, अयशकीर्ति का उदय कहाँ तक पाया जाता है? चौथे तक ही होता है, ही लगाना। फिर चौथे के आगे क्या होगा? यशकीर्ति का ही उदय है। यशकीर्ति का उदय पहले गुणस्थान से हो सकता है, परंतु चौथे के आगे, पांचवे के आगे तो यशकीर्ति का ही उदय है, अयशकीर्ति का उदय होता ही नहीं है, इसलिए इनको अलग निकालना। चौथे तक तो ऑप्शनल है, चौथे वाले को दोनों का उदय हो सकता है। देखो ये सम्यक दृष्टि है, उसको भी अयशकीर्ति का उदय हो सकता है, पांचवे को नहीं है। मुनि की तो बात आगे है, इसलिए संयता संयत और सभी संयत, उसके लिए नियम शब्द लगाया। नियम से यशकीर्ति के उदीरक हैं, क्योंकि उनके अयश का तो उदय ही नहीं रहता। इसलिए जब प्रग्रह से प्रगृहित अर्थात संयम को स्वीकार करता है, तब अयशकीर्ति का वेदक भी यशकीर्ति का वेदक होता है। क्या कहा? प्रग्रह से प्रगृहित यानी वो संयम और संयमासंयम का जो ग्रहण करता है, तो क्या होता है? अयशकीर्ति का उदय वाला भी यशकीर्ति का हो जाता है, क्योंकि हमने देखा अभी अभी चौथे गुणस्थान में उसके उदय की विच्छित्ति होती है। जिस समय उसको पांचवा गुणस्थान प्राप्त हुआ है, हाँ, तो उसका वो यशकीर्ति का उदय हो जाता है। शेष जीव दोनों का वेदन करते हैं। दोनों का वेदन है ने? कभी यश का कभी अयश का, दोनों ही पॉसिबल है, या नाना जीवों की अपेक्षा दोनों ही होते हैं। प्रग्रह का अर्थ संयम और संयमासंयम है। अयश कीर्ति नाम कर्म की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्य दृष्टि तक होती है। रुकना पड़ेगा अभी, इसमें यश अयश पर भी बोलना था कुछ, कल बोलेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नो सदा देत हो। मयंक भाई।